लिथियम आयन बैटरियां सही इस्तेमाल होने पर महफूज रहती है, लेकिन जब वो नाकाम हो जाती है तो वो भड़क जाती है और आग लग सकती है जो तेजी से फैल सकती है और काबू से बाहर होकर एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है जो रिहायशों के लिए एक खतरा बन सकती है। लिथियम आयन बैटरियां इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती मालूमात के लिए danton.ca/battery safety पर जाएं।
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca.
Heavenly Desserts, upscale desserts cafe, जहां आप enjoy कर सकते हैं innovative desserts जैसे कि croffle, milkshakes, cheesecake, crepes, sundae jars, British classics, handcrafted drinks, mojitos, milkshakes and smoothies. मज़ेदार डिजर्ट्स की बहुत सारी वैरायटी और वो भी पूरी फैमिली के लिए। हेवनली डिजर्ट्स, 5840 मेविस रोड, यूनिट नंबर 2 इन मिसिसागा। कॉल 905-203-0086, 905-203-0086।
वेलकम बैक तमाम सामाईन जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टी पर देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब बिल्कुल पायलट चेंज हो गया है, अब से लेकर 9 बजे तक मैं आमिर अहमद, शाजिया मलिक हमारे साथ होंगे और इसके बाद न्यूज के बाद जो है हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट 7 से लेकर 9 तक शुरू होगा, उसमें हमारे साथ जीशान भी ज्वाइन कर लेंगे। और आज हमारे साथ जो है हमारे एक्सपर्ट जो है वो कैसर सगीर होंगे ओवर स्काइप वीडियो पर, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नहीं 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 आवाज ही नहीं आ रही भाई आप लोगों की, जब आप नाम लेते हैं ना तो पूरा नाम लें, डॉक्टर शाजिया मलिक। हाँ अब आपने कहा ना, बिल्कुल जनाब यही है डॉक्टर शाजिया मलिक साहिबा, खबरों की डॉक्टर, तो उन्हें भी जो है वो प्रोग्राम में नहीं बुलाते आज और खुद कंटिन्यू करते हैं। और 2-4 एड्स हैं मेरे पास रमजान के साथ, ईद उल अजहा के हिसाब से रमजान तो नहीं, कुछ नहीं सुनना, नहीं सुन ले एक एड तो सुन ले। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, एक डील बनाते हैं आज की, मैं इनको इंट्रोड्यूस करा तो देता हूं लेकिन उसके बाद इनका माइक बंद कर दूंगा, माइक भी नहीं बंद कर। चलें जी आज, लेकिन आज जो लोग टीवी पे देख रहे हैं ना उनसे एक क्विज है, आप अभी मैं कैमरा शिफ्ट करूंगा ना जब इनके ऊपर, तो आप लोगों ने देख के एक नाम लेना है, वो अगर आपका नाम मेरे ना लिया हुआ है उससे मैच हो गया तो उस पर भी एक गिफ्ट दे दूंगा, यकीन करें। मैं अरफा पक के मतलब पूछे बगैर मैं कह रहा हूं कि वो गिफ्ट हो जाएगा अगर आपने एग्जैक्ट मैच कर दिया वो नाम, वो आरफापा को भी पता है, माजिद भाई को भी वो नाम पता है, पूरी मैनेजमेंट को पता है ये नाम, लेकिन अगर आपने उस नाम से मैच भी करीब करीब भी आ गए तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। चलें जी डन हो गई बात, अब बुला लें उनको और गौर से देखिएगा, 30 सेकंड्स मिलेंगे देखने के लिए, उसके बाद पर्दा हटा दिया जाएगा। चलें जी शाजिया मलिक को शामिल करते हैं, बहुत ही जबरदस्त खबरें आज लेके आई हैं और खुशखबरियां भी होंगी, कुछ बम धमाके भी हो रहे होंगे दुनिया भर में, तो पूछते हैं। वेलकम, सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, वड़कम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कैसे हो?
वैसे आपने छोड़ा था,
बस तुम पाकिस्तानी दवाई नहीं खा रहे ना तो इसलिए तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ अगर तुम पाकिस्तानी दवाई खाओगे फिर चेंज आएगा, ये कनेडियन दवाइयां खाते रहोगे तो तुम वैसे ही गंदे से रहोगे। हाँ यानी कि तबीयत भी तुम्हारी खराब रहेगी ना,
गंदी सी रहेगी।
हाँ गंदी सी रहेगी, ठीक नहीं होगे तुम, तो पाकिस्तानी दवाई खाना जरूरी है।
अच्छा अब जो लोग देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ 5 सेकंड्स हैं, जिसका कैमरा इनके ऊपर 5 सेकंड्स दे रहा हूं, इनको गौर से देख लें और एक पिक्चर को जनरेट करें अपने दिमाग में, स्वीट मैं इतना हिंट दे देता हूँ, एक स्वीट बस, अब खत्म क्या
मतलब? हाँ, स्वीट यानी बता दो उनको, जैसे लड्डू होता है, गुलाब जामुन होता है, वैसा करके तुम कुछ पूछ रहे हो कि ये वैसी लग रही है।
मैं बता रहा हूँ आपको, माशाल्लाह जो व्यूअर्स हैं,
हाँ जी हाँ जी,
और जाहिर है अब आई एम सॉरी जो लिसनर 770 पे सुन रहे हैं उनको मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, वो ये न्यूज रिकॉर्ड हो जाएगी और यूट्यूब पे भी जाएगी, तो उस वक्त जाने के बाद आपके जो रेडियो सुन रहे हैं उनको मैं चांस दे दूंगा कि वो कल आके बता दें। देखो जो रेडियो सुन रहे हैं अब उनका तो मैं नहीं कर सकता ना, उनका दिल दुख जाए, बोलेंगे भाई आपने टीवी वालों को तो दिखा दिया अभी अभी रिसेंट चल रही है जी, अब जो बेचारे सुन रहे हैं रेडियो पे मेरी खूबसूरत आवाज,
खूबसूरत
वो कहेंगे कि ये अब हमने तो देखा ही नहीं है तो हम इस कॉन्टेस्ट में कैसे शामिल हो। उनके लिए अर्ज ये है कि ई आवाज का हमारा यूट्यूब चैनल है ई आवाज टीवी, उस पर ये खूबसूरत न्यूज जाएगी, आपने उस पर जाकर जो है देखना है और फिर बताना कल आके कि आपके जहन में क्या आया।
हाँ जी
ठीक हो गया सर जी,
ठीक है,
ये कॉन्टेस्ट हो गया बिल्कुल जबरदस्त,
ओ
मजा आ जाएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा,
और वैसे तो कॉन्टेस्ट की बात हो ही रही है, तो कॉन्टेस्ट का जो है ना वो मेगा इवेंट होने जा रहा है, 11th हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल जनाब, ये होने जा रहा है 15 और 16 जून को, और पहले दिन जो है वो कह रहे हैं कि जनाब अली हैदर साहब परफॉर्म करेंगे, और
है? क्या क्या
अली हैदर परफॉर्म करेंगे जनाब,
नहीं 15 को अमानत है और 16 को अली हैदर है,
नहीं नहीं
15 को अमानत है,
सैटरडे को जो है वो अली हैदर है,
अच्छा।
और संडे को जो है वो अमानत अली है। अमित शर्मा साहब मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उनका मैसेज आ गया मेरे पास,
ठीक है,
पहले जो है वो अली हैदर करेंगे, उसके बाद अमानत अली परफॉर्म करेंगे जनाब, खाने पीने के स्टॉल्स होंगे और बहुत ही फन होने वाला है जनाब, आपको जैसे पता है कि ये 11वां हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल है, तो आप सब ने जो है वो मोहल्ले वालों को भी साथ लेके पहुंचना है। सबसे अच्छी बात है कि जो मिसिसागा की 50th ईयर एनिवर्सरी है, मिसिसागा अपनी मना रहा है, तो आप सबने पहुंचना है, उसके लिए आपने जो अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट करना है यानी को आपने बूथ को जो है वो बुक कराना है या कोई स्पॉन्सरशिप देनी है तो आमिर शमसी को आप कॉल कर सकते हैं, कॉल ना उठाए तो उनको मैसेज कर देना और मेरा नाम लेना कि भाई आमिर ई आवाज ने जो है वो ये नंबर दिया है 416-662-7861 सही हो गया, शमसी साहब का नंबर है, कॉल कर ले, नहीं मुझे मालूम है नहीं उठाएगा, वो सुन भी रहे हैं अभी वो नहीं उठाएंगे कॉल, तो आप इनको मैसेज करें, ही इज वेरी गुड इन द मैसेज, मतलब आप उनको मैसेज करें विद इन 45 मिनट्स आपको रिप्लाई कर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेता, आप इनको कॉल जरूर करेंगे जनाब 416-662-7861 आमिर शमसी का नंबर है, कोई भी आपने स्पॉन्सरशिप या बूथ के लिए करना है आप जरूर करें जी जनाब।
ओके जी, खबरें शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बाशा, राजा बाशा जी ऑल स्टेट में होते हैं और कहते हैं जी मैं आपको राइट कवरेज देता हूं, तो अगर आपको घर की और गाड़ियों की राइट कवरेज चाहिए, इंश्योरेंस या रेंट पॉलिसी आपको सही वाली चाहिए, तो आप राजा बाशा जी को कॉल करें, इनका नंबर है 6472903773 और डॉक्टर फयाज कुरैशी जो हैं वो कहते हैं मैं हर तरह की आपको डेंटिस्ट्री की सर्विसेज देता हूं, इनके 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में 1 स्कार्ब्रो में, तो अगर आपको मिसिसागा के किसी उसमें जाना है क्लिनिक में तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9052325678 और अगर आपको स्कार्ब्रो में जाना है तो आप कॉल कर लें 416-757-9999 और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल यहां पे 1400 प्लस टाई बंदा जो है मैं आमिर रोजी और मजिद भाई उनको आप बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, कोई हम आपको मायूस नहीं करेंगे, बस आप बुलाने वाले बने हैं जी, तो अगर आपको अपना कॉर्पोरेट या अपना फैमिली इवेंट करना है तो आप कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं और अपने बंदे भी आप बुला सकते हैं, दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्रीव रोड मिसिसागा और इनका नंबर है 6479653823। अच्छा जनाब आज की सबसे बड़ी खबर इतनी बड़ी खबर के प्राइम मिनिस्टर की न्यूज से पहले हम सुना रहे हैं, इतनी बड़ी खबर है, बैंक ऑफ कनेडा ने अपना ओवरनाइट लेंडिंग रेट जो है वो कम कर दिया और आमिर की मॉर्गेज $20 जो है वो कम हो गई है भाई महीने के हिसाब से, हर महीने $20 अब ये कम देगा तो अगर आपके भी $20 कम हो गए हैं तो आज टुडे कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, तो प्लीज आपने सेलिब्रेट करना है, ठीक है जी, 25 बेसिस पॉइंट्स इन्होंने कम किए हैं, एज अ रिजल्ट 5% से अब ये जो इनका पॉलिसी रेट है ये 4.75% पे आ गया है, ये रेट जो है बैंक ऑफ कनाडा इंक्रीज कर रहा था मार्च 2022 से, क्योंकि वो कहता था कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है,
और जब तक इन्फ्लेशन जो है नीचे नहीं आनी शुरू होगी वो ये रेट्स नीचे नहीं लाएंगे। तो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने रेट कट किया है इतने लंबे अरसे में। ऑल्सो बैंक ऑफ कैनेडा इज द फर्स्ट वन, अपने जो पीयर्स हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा रेट इन्होंने कम किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व, किसी ने भी जो है रेट कट्स नहीं किए हैं, इन्होंने किए हैं। गवर्नर टिम मैकलम जो है उनका कहना है कि मेरा कॉन्फिडेंस अब आ रहा है कि इन्फ्लेशन शायद जो है नीचे आएगी 2% के टारगेट के ऊपर। हाँ वो नहीं आएगी वैसे, लेकिन वो कहते हैं जी आएगी शायद, क्योंकि ये 2.7% पे आई थी अप्रैल में, डाउन फ्रॉम 2.9% इन मार्च, और इनकी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो की थी 1.7% से इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। एम्प्लॉयमेंट जो थी वो ग्रो की थी 90,000 से इन अप्रैल, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर पार्ट टाइम जॉब्स थे। नेक्स्ट जो बैंक ऑफ कैनेडा का रेट अनाउंसमेंट है वो जुलाई 24th को आएगा। अब ये और नीचे आएगा या नहीं आएगा ये तो अब पता चलेगा, और ये जो है जनाब देखेंगे हम तो फिर
नहीं, और नीचे आएगा
और आएगा नीचे
0.25 और नीचे।
चलो ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो जंती ट्रूडो साहब हैं वो अब नॉर्मेंडी जा रहे हैं फ्रांस के अंदर टू मार्क 80th एनिवर्सरी एक्सक्यूज मी ऑफ डी डे, जिसमें के तकरीबन 160,000 एलाइड फोर्सेस जो थे वो लैंड किए थे यहां पे बीचेस पे ऑन June 6, 1944 में। ये जो थी इसको कहा जा रहा था कि दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एन एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तकरीबन 4,414 इसमें से जो एलाइड फोर्सेस थे उनकी डेथ इस दिन में हुई थी, इंक्लूडिंग 381 कनेडियंस। तो ट्रूडो साहब जो है ये अटेंड करने के लिए जाएंगे सेरेमनी, पहले वो जूनो बीच पे जाएंगे और फिर इंटरनेशनल सेरेमनी जो हो रही है ओमाहा बीच के ऊपर वहां जाएंगे। यहां पे कनाडा के जो डेलीगेशन है उसके अंदर 13 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स भी हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है उनकी एज 104 ईयर्स है। जूनो बीच सेंटर जो है वहां पे कैनेडियन फ्लैग्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि फ्रांस का कहना है कि लोगों को भूला नहीं है जो कैनेडियंस ने सैक्रिफाइसेस यहां पे दी थी। ट्रूडो साहब के अलावा यहां पे जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रों भी होंगे, किंग चार्ल्स III, बाइडन साहब, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और इटालियन प्रेसिडेंट सर्जियो मैटरेला जो है वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ऑन्टेरियो जो है वो जनाब अब अपना जो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस है उस इनिशिएटिव को अब हौले हौले खत्म कर रहा है, जिसकी के वजह से बड़ा क्रूशल डेटा जो था वो साइंटिस्ट को मिलता था ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड कंजर्वेशन एंड पार्क्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है आज मीडिया को कि ऑन्टेरियो जो है हौले हौले इसको जो है अब खत्म कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ड्यूप्लीकेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी जो एडिशनल साइट्स के ऊपर सैम्पलिंग एक्सपैंड कर रही है। इसलिए जो ऑन्टेरियो की हेल्थ मिनिस्ट्री है वो काम करेगी पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा के साथ और डेटा शेयरिंग भी करेगी। तो इसलिए जो है ये खत्म कर रहे हैं अपना जो इन्होंने शुरू किया था वेस्ट वाटर सर्वेलेंस इनिशिएटिव। ये डेटा जो था इसने बहुत हेल्प किया था ना सिर्फ कनाडा को बल्कि ऑन्टेरियो को भी टू ट्रैक द इमर्जिंग ट्रेंड्स और वेव ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो मगर अब वो कहते हैं जी कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है तो हम विड्रॉ कर रहे हैं। टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड जो है उसने कहा जी कि मई के महीने में जो घर थे उनकी सेल्स नीचे रही 21.7% फ्रॉम लास्ट ईयर, लेकिन जो न्यू लिस्टिंग्स थी वो जो है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आती रही। 7,013 होम्स जो है दे चेंज्ड हैंड्स इन मई कंपेयर्ड विद 8,960 इन मई 2023। एवरेज सेलिंग प्राइस इन जीटीए वाज डाउन 2.5% ईयर ऑन ईयर टू 1.165 मिलियन। इसके अलावा जो न्यू लिस्टिंग्स थी वो जंप की 21.1% से इन द सेम पीरियड विद 18,612 प्रॉपर्टीज ऑन मार्केट लास्ट मंथ। और वो कहते हैं जी लेकिन जो होम बायर्स हैं या कि फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं उनको अभी भी जो है वो क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं कि क्या ये मॉर्गेज रेट्स नीचे ही रहेंगे या ऊपर भी जा सकते हैं फिर से। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये तो अभी पहला स्टेप है जो कि प्राइसेस नीचे आई हैं मॉर्गेज की जो आज सॉरी आएंगी मॉर्गेज की प्राइसेस बैंक ऑफ कनाडा ने जो रेट कट किया है, लेकिन जुलाई में क्या होने वाला है मेरे ख्याल में उसके बाद ही लोग जो है अपना डिसीजन बनाएंगे घर देखने का। कल अगर आप टीवी देख रहे थे तो कल बड़े फायरवर्क्स देखेंगे, क्योंकि यूके के जो दो बड़े लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के और जो करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं ऋषि सुनक और उनके जो हैं अपोनेंट लेबर लीडर केयर स्टार्मर, उनके बीच में फर्स्ट लाइव टीवी डिबेट चल रही थी जिसके के अंदर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जम के हमले किए। इसके अंदर उन्होंने टैक्सेस पे बात की, इमिग्रेशन पे बात की और नेशनल हेल्थ सर्विसेज जिनको कहते हैं ये लोग NHS, उसकी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा बात की। इन लोगों ने जो है ये जो डिबेट हो रही थी ये नॉर्थ वेस्टर्न टाउन ऑफ सैल्फर्ड के अंदर हो रही थी और इंग्लैंड के अंदर जो इलेक्शंस हैं इस साल 4 जुलाई को होंगे। कंजर्वेटिव्स जो हैं वो लेबर से कोई 20 percentage points पीछे हैं अकॉर्डिंग टू ऑल द पोल्स जो कि इस वक्त इंग्लैंड में आ रहे हैं। सुनक साहब ने बहुत ज्यादा एतराज किया लेबर पार्टी के जो टैक्स इनिशिएटिव्स हैं और वो कहते हैं जी कि उनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे आई है और उनके पास प्लान है ये स्लगिश इकोनॉमी को ठीक करने का। स्टार्मर साहब ने कहा जी कि आप लोगों ने जो कंजर्वेटिव यानी है उन्होंने केओस क्रिएट किया था और उस केओस की वजह से आपको बोरिस जॉनसन को भी रिमूव करना पड़ा था। इसके अंदर मनी और एथिक्स के स्कैंडल्स आए थे और इसके बाद 49 डे का सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर टेन्योर था लिज ट्रूज का, तो ये सब शो करता है कि आपके टैक्स पॉलिसीज, आपके मॉर्गेजेस जो हैं वो सब ऊपर जा रहे हैं, आपकी पॉलिसीज चल नहीं रही हैं। सुनक साहब जो हैं वो अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर बने थे और वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में भी कंजर्वेटिव पार्टी जीते, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। स्टार्मर साहब ने इस मौके पे बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने डिवीजन पैदा की है इंग्लैंड के अंदर और हम जो हैं रीबिल्ड करेंगे लेबर को, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप इनको वोट ना दें। दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चीखते रहे, हालांकि मॉडरेटर जो है वो बार बार कहता रहा कि भाई आप एक दूसरे के जब एक बोल रहा है तो दूसरा उसके ऊपर ना बोले और आप अपनी वॉइसेस भी नीचे रखें, लेकिन कोई भी मानने को इस बात को तैयार नहीं था और काफी जो है हॉट किस्म की रही डिबेट जो है। यूएस हाउस जो है उसने अब एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम सैंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC जो है उनके जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं आपको पता ही है करीम खान, उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि जो हमास और इजरायली ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की जरूरत है। हाउस के अंदर जो वोटिंग हुई उसमें 247 ने फेवर में दिया और 155 ने अगेंस्ट दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने वॉर क्राइम्स का इनके ऊपर एतराज किया है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन यूएस जो है उसने ICC की ये जो रूलिंग थी उसके ऊपर या ये जो सामने आई थी डिसीजन उसके ऊपर एतराज तो किया था, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि हम इस लेजिस्लेशन को जो है वो फेवर नहीं देंगे क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन है इट इज एन ओवर रीच, यानी कि कुछ ज्यादा ही जैसे ओवर एग्जेजरेटेड आप कहते हैं कि वैसा है, तो इसलिए तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसराइल के साथ खड़ी है नहीं खड़ी है, क्योंकि आज इन्होंने रोका है इसको यूएस हाउस का ये जो लेजिस्लेशन इनके सामने आया था। बाइडेन साहब ने आज कहा है जी कि ये जितनी भी इलीगल इमिग्रेशन हमारे मुल्क में होती है अमेरिका में उसको, ये जो क्रॉस बॉर्डर होती है जैसे कि यूएसए से मेक्सिको से आते हैं, यूएस मेक्सिको बॉर्डर से जो लोग एंटर होते हैं उनको रोकने की हमें जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि नवंबर का इलेक्शन आने वाला है और जो है ट्रंप साहब बहुत ही रियल बिग ऑन दिस थिंग, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल ये इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन है इसको रोकना चाहते हैं। और ये जो है इन्होंने कहा जी के जो एक्सेप्शंस दी जाएंगी जो अनअकंपनीड किड्स आएंगे उनको और जो लोग फेस कर रहे हैं सीरियस मेडिकल या सेफ्टी थ्रेट्स या कि जिनको के ट्रैफिक किया गया है अकॉर्डिंग टू होमलैंड सिक्योरिटी। बाइडेन साहब ने कहा जी कि हमारी जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी है इसको बहुत ज्यादा खतरा है और जिस वक्त तक ये खतरा टलेगा नहीं, जिस वक्त तक हम चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने बॉर्डर को जो है वो सेफ नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक जो है, और ये नंबर जिस वक्त तक रिड्यूस नहीं हो जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स का आने का, उस वक्त तक ये जो मेजर्स मैंने आज अनाउंस किए हैं ये इन प्लेस रहेंगे। बाइडन साहब आपको पता ही है 2021 में प्रेसिडेंट बने थे और उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये जो ट्रंप साहब की रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं इनको सबको मैं रिवर्स करूंगा, लेकिन जिस वक्त वो आए तो ही फाउंड आउट कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा नंबर है जो मुल्क में आता है और फिर टैक्स पेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है और सिस्टम पे भी, जिसकी वजह से उन्होंने आज ये सारे मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। अमेरिका की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं जी, उसमें पकड़ धकड़ और सैक जो किया जा रहा है लोगों को, उसके सिलसिले जो हैं चल रहे हैं। आज तकरीबन कोई 13 के करीब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया जो है उसमें प्रो पैलेस्टीनियन जो स्टूडेंट्स थे उनको आज पुलिस को यूनिवर्सिटी ने बुलाया और उन्होंने इनको पकड़ा है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन लोगों ने जो प्रेसिडेंट जहां पे बैठते हैं रिचर्ड सैलर, उनके ऑफिस के अंदर बिल्डिंग में दाखिल होने की जबरदस्ती कोशिश की। स्कूल का कहना है कि इन्होंने आके अंदर काफी सारा बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से फिर पुलिस को बुलाना पड़ा और इनको जो है ये अनलॉफुली एंटर हुए थे तो इनको अरेस्ट करना ही था। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो है उसने भी जो वो प्रो पैलेस्टीनियन 25 के करीब जो बच्चों ने एनकैंपमेंट लगाई हुई थी उनको भी पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया फॉर एनकैंपमेंट। इसके अलावा आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो जो है वहां पे भी ये प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स थे इनको अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर तो बल्कि क्रिमिनल चार्ज लगाया गया फॉर क्रिमिनल ट्रेसपैसिंग जो है दिस इंस्टीट्यूट एट अ डेमोन्स्ट्रेशन। और उन्होंने कहा जी कि ये इलीगली जो है प्रॉपर्टी का एरिया जो है ये ऑक्यूपाई किया हुआ था और उसके लिए जो है फिर इनको हटाना जरूरी था। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है उन्होंने भी अपने जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उनको अलर्ट किया था क्योंकि यहां पे ग्रेजुएशन सेरेमनीज हो रही थी और स्टूडेंट्स बहुत सारे ये जो स्टेडियम के अंदर आ गए थे अपनी डिग्रीज लेने के लिए, इन्होंने कैफिया वो जो उनका ये ट्रेडिशनल स्कार्फ है ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड सा वो पहना हुआ था और पैलेस्टीनियन फ्लैग्स ये लोग रेज कर रहे थे। पुलिस इनको सारे प्रोटेस्टर्स को दूसरी तरफ स्टेडियम के पीछे लेकर जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये पीसफुल था सारा कुछ तो इसलिए कोई अरेस्ट जो है वो यहां पे नहीं हुए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में भी बहुत बड़ा एक क्राउड था जो कि नेशनल एंथम भी सिंग कर रहा था और यूएस फ्लैग्स भी कैरी कर रहा था और काफी कन्फ्रंटेशन हुई प्रो पैलेस्टीनियन और जो काउंटर प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में, लेकिन अरेस्ट की कोई खबर जो है वो यहां पे नहीं आई क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे ज्यादातर पीसफुल थे। तो ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी अब ये चीज जो है वो जोर पकड़ रही है। कतर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा जी कि दोहा को जो मैसेज दिया गया था बाइडन साहब की तरफ से कि आप इसराइल जो है मान गया है सीज फायर के लिए तो ये प्रपोजल आप हमास को दें, तो वो उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई भी कॉन्क्रीट अप्रूवल किसी साइड से भी दिखाई नहीं दे रहा है। माजिद अल अंसारी जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारे पास क्लियर पोजीशन होनी चाहिए क्योंकि हमें पता चला है कि नतन्याहू की कैबिनेट जो है उन्होंने उनको थ्रेटन किया है कि वो उनकी गवर्नमेंट को हट जाएंगे उससे और जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट कलैप्स उनकी कर जाएगी क्योंकि बहुत सारे इजरायली मिनिस्टर्स जो हैं उनके बयान आए हैं और उन्होंने कहा जी कि हम इस चीज में आपका साथ नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं कतर कह रहा है जी कि एक यूनिफाइड पोजीशन जो है वो होनी चाहिए जिसकी वजह से हम बात करेंगे। इससे पहले बाइडन साहब जो हैं उन्होंने कतारी अमीर तमीम बिन हमद अल थानी जो हैं उनको कहा था कि इसराइल बिल्कुल ये इस प्रपोजल को मानने को तैयार हो गया और हॉस्टेज का एक्सचेंज होना चाहिए अंडर द प्रपोजल और इन्होंने अर्ज किया था दोहा को कि आप प्रेशराइज करो डमास को हमास को और उनको कहो कि ये जो है इसको माने। इसके साथ साथ जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की साहब वो भी अब कतर में पहुंचे हुए हैं और कतर के अमीर को कह रहे हैं कि वो इनका जो पीस समिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो कतर रियली इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइमलाइट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। एक तो मीडिएशन वो करा रहे हैं हमास के साथ अलॉन्ग विद इजिप्ट और मेन तो रोल वैसे कतर का ही है और अब जो है ये ज़ेलेंस्की साहब जो है वो भी चाहते हैं कि कतर आके पीस समिट में बैठे। जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज़ लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे और फैसल चटा साहब के भी दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में और एक ओकविल में। तो आपको कहीं पे भी जाना है तो आप पहले ऑर्डर डाल लें। मिसेस सागा का नंबर है 9052323663 और ओकविल का जो नंबर है 9052262294 है। पायल ज्वेलर्स, इनकी ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है जनाब, और यहां पे वो कहते हैं बहुत ही जबरदस्त हम ज्वेलरी के डिजाइन वाली ज्वेलरी लेकर आए हैं, और ये दुबई से और सिंगापुर से लाए हैं, तो आपको अगर ये खूबसूरत लेटेस्ट ज्वेलरी लेनी है तो आप इनको एक तो विजिट करें 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन में, या कि आप इनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। और जनाब हेवनली डिजर्ट्स, जबरदस्त किस्म के इनके बड़े ही यूनिक और डिफरेंट किस्म के डिजर्ट्स हैं, तो अगर आपको भी एंजॉय का मजा लेना है तो आप जाएं एट 5840 मेविस रोड यूनिट 2 मिसिसागा में, या कि फिर इनको कॉल कर लें एट 9052030086 के ऊपर। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है जी वो अब अपना फाइनलाइज कर रही है बजट लाने के लिए 2024-25, और उससे पहले ही कुछ चीजें जो है काफी सारी सामने जो है वो आ गई हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने प्रपोज किया है 15-20% हाइक इन सैलरीज, और उन्होंने कहा जी कि ये मॉनेटरी जो पॉलिसी है ब्यूरोक्रेसी की इसको जो है इंक्रीज करने की जरूरत है फ्रॉम 40,000 to 60,000, ताकि ये जो ऑफिसर्स हैं जो ग्रेड 20 एंड अबव के हैं उनको सहायता मिल सके। इसके अलावा जो ग्रेड 21 और 22 में हैं उनकी वो कह रहे हैं जी इंक्रीज करें ये 65,000 से 105,000 तक, और 10% सैलरीज भी जो हैं वो ग्रेड 1 से लेके 20 ग्रेड तक के इंक्रीज करें बाय 10%। इसकी वजह से ये सारे जो कदम उठाना चाहते हैं, इसकी वजह से नेशनल एक्सचेकर यानी खजाना जो है उसके ऊपर 80 बिलियन रुपीज का जो है वो बोझ आएगा। इसके साथ साथ ये भी डिमांड की जा रही है कि 200% इंक्रीज करें मेडिकल एंड कन्वेयंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज बिटवीन ग्रेड 1 to 16, और इनको जो है वो कन्वेयंस अलाउंस 1800 जो है वो दिया जाए, और जो मेडिकल अलाउंस है वो 1500 दिया जाए। ग्रेड 17 से 18 जो है उनको 5000 जो है वो कन्वेंस अलाउंस जो है वो दिया जाए, और वो कहते हैं जी कि ग्रेड 16 के जो हैं उनको डिस्पैरिटी अलाउंस जो है 25% दिया जाए। ये 15% था 2021-22 में, तो अब इसको कहा जा रहा है कि 25% तक बढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है इसको आप कंटिन्यू रखें ताकि प्रोविंशियल और जो फेडरल एम्प्लॉयज हैं उनके बीच का जो है गैप है उसको खत्म किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर आज बीवी जरदारी जो हैं उन्होंने कहा जी कि तमाम की तमाम नेशन जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड और पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजन टाइप की पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। आज पीपीपी के सिंध चैप्टर के पार्लियामेंटेरियंस की जो पार्टी मीटिंग हो रही थी उसको ये एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमको जोर देना चाहिए अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफर और पोस्टिंग है इसको रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल जो सेंटर है उससे प्रॉपर फंड्स नहीं मिल रहे हैं। आपको पता ही है किस चीज की शिकायत केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने भी की थी। बीबी जरदारी भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम जो सेंट्रल की गवर्नमेंट लेड बाय पीएमएलएन है उनको हम कहेंगे कि वो हमारे फंड्स जो है सिंध के फॉरन रिलीज करें, और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ वादा किया था तो मुझे लगता है कि वो अपने वादे को फुलफिल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारा काम लोगों को सर्व करना का होना चाहिए, और जो रूलर्स हैं उनको जो मैसेज के प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ध्यान चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सिंध के अंदर बहुत सारे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बहुत लेजी हैं, उनको जो है जरा थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो भाईजान जिस वक्त आपके जो नाना जी थे वो भी बड़ी पोलराइज किस्म की पॉलिटिक्स करते थे, तो आपने अपने नाना जी पे नहीं कभी एतराज करना, आपने पीटीआई के ऊपर ही करना है कि वो बहुत ही हाइपर पार्टिजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाइपर पार्टिजन पॉलिटिक्स का जो है वो शुरू कहां से हुई? आपके नाना जी से, क्योंकि जनरल इलेक्शन में शायद आपको याद नहीं है 1971 में मुजीबुर रहमान साहब जीते थे, आपके नाना जी नहीं जीते थे, लेकिन आपके नाना जी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी हार, तो उन्होंने ये हाइपर पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन जो थी ना वो शुरू की थी कि जो है ये तुम इधर हम इधर और ये इस तरह की बातें आपके नाना जी ने शुरू की थी, और जिसकी वजह से मुल्क के जो है फिर दो टुकड़े भी हुए। तो आप अपने नाना जी से जरा शुरू कर लें ये बातें, तो फिर उसके बाद वहां से होते होते फिर हम आ जाएंगे पीटीआई के ऊपर भी। तो जरा थोड़ी सी हिस्ट्री की भी आप स्टडी कर लें कि कौन क्या करता था, और फिर उसके बाद आपके वालिद साहब जो थे उनका भी एक नारा था सिंध खप्पे। तो अगर इतना ही आपको मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ तो फिर आप अपने वालिद साहब से भी पूछ लो कि भाई उन्होंने क्यों ये नारा मारा था सिंध खपे का। और जरा एग्जांपल आप हमारे टूडो साहब से ले लो, टूडो साहब आपको पता ही है ना हर वक्त सॉरी करते रहते हैं, तो अपने अब आपके नाना जी की तो डेथ हो गई, अपने वालिद साहब से को एटलीस्ट वो जिंदा है जरा सॉरी कर लें। तो बात आप उधर से शुरू करें अपनी फैमिली से. यू नो आपने सुना ही होगा वैसे भी ऑक्सफोर्ड से आप पढ़ के आए हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो आप जरा पहले अपने घर से शुरू कर लें ये सारी बातें और फिर ये बाकी दूसरे लोगों तक आ पाएं. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑर्डर किया है पीडीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को और उनके जो पार्टी के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन और जो पार्टी के दूसरे लीडर हैं उमर अयूब खान साहब, उनको कहा है कि एफआईए के सामने आके ये अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें. वो जो कंट्रोवर्शियल एक एक्स के ऊपर पोस्ट आई थी जिसमें कि इमरान खान की तरफ से एलिजली कहा गया था कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट जो है उसको पढ़ा जाए ताकि आपको पता चले कि साजिश कौन था, कॉन्स्परेसी किसने की थी, जनरल याया ने या मुजीबुर रहमान ने. और इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को भी मना किया है कि भाई आप भी पीटीआई के इन ऑफिशियल को हरास ना करें और कोई खराब किस्म का एक्शन ना लें. ये एक रिटन नोटिस जो है वो दिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जो हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी ने, और इनके पास एक पिटीशन आई थी कि ये एफआईए वाले जो हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं. उमर अयूब खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल एफआईए के सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूं. इसके अलावा उन्होंने अपनी लीगल टीम के थ्रू जो है कोर्ट में ये मैसेज भेजा है कि एफआईए का जो शो कॉज नोटिस है वो इंतहाई डेफिमेटरी है, बहुत ही उसके अंदर अनलॉफुल क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोई भी स्पेसिफिक किस्म के कोई रेफरेंसेज नहीं दिए गए हैं ताकि उसका स्पेसिफिक जवाब दिया जा सके. तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जो हैं उन्हीं सारी चीजों को एड्रेस कर रहे थे. ये एक कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 आया था जी, इसको अब अमेंड किया गया था जिसके के बाद अब नेप्रा जो है ये जो नेशनल पावर एजेंसी है ये कह रही है कि ये जो भी कोई रिलीफ मेजर्स दिए जाते थे पावर कंज्यूमर्स को फॉर देयर बिल्स वो खत्म किया जा रहा है. और वो मेजर जो रिलीफ का था वो ये था कि जब बिल ज्यादा आ जाता था तो लोग इंस्टॉलमेंट्स में बिल देते थे, अब ये सहूलत जो है खत्म की जा रही है. उन्होंने कहा जी कि ये उस वक्त शुरू की जाएगी फिर से उन लोगों के लिए जब ये अपने पूरे के पूरे जो बिल्स हैं वो क्लियर, अपने ड्यूज जो हैं वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो पावर जनरेशन कंपनीज थी उन्होंने इनको शिकायत की थी कि बहुत सारे हमारे पेंडिंग जो है अभी पैसे लोगों के पास पड़े हुए हैं और क्योंकि उनकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती हैं और वो फिर हमारे पास पैसे पहुंचते नहीं है जिसकी वजह से फिर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं पावर जनरेशन के लिए. कंज्यूमर्स को कहा गया है कि आपको पे करना पड़ेगा 14% मार्कअप दूसरी इंस्टॉलमेंट्स पे, लेकिन आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके ऊपर ये जो है नहीं इम्पोज किया जाएगा. और अगर आपको छोटी छोटी किस्तें भी बनानी पड़ेंगी तो जब आप अपना पहला सारा बिल जो है ड्यू डेट तक दे देंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा, रिक्वेस्ट आपकी देखी जाएगी कि क्या उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है या जो इंस्टॉलमेंट्स बनाने की जरूरत है कि नहीं है. इसके अलावा उन्होंने पावर जनरेशन कंपनीज को कहा है कि आप सारे के सारे बिल जो हैं कंप्यूटराइज करें और ताकि पता चल सके कि कौन कितने यूनिट्स यूज कर रहा है और फिर लोगों को जो है एक प्रॉपर बिल आए जिसकी की वजह से उनको पता चलेगा कि वो कितनी बिजली जो है कंज्यूम कर रहे हैं. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक साहब आज वो जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे जिसमें कि उन्होंने कहा कि कोर्ट की रिपोर्टिंग के ऊपर कोई भी बैन नहीं है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल कोर्ट रिपोर्टिंग ना करें और इसके अंदर सेंसेशनलिज्म जो है वो या सेंसेशनल टिकर्स जो आप चलाते हैं अपने टीवी चैनल्स पे वो ना चलाएं. आज आमिर फारूक साहब जो हैं वो एक हियरिंग सुन रहे थे क्योंकि जो पेमरा के रिस्ट्रिक्शंस आए थे कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता उसको चैलेंज किया था. ये पिटीशन जो थी फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसके ऊपर एडिशनल एजीपी जो हैं उनसे कोर्ट ने जब पूछा कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि पेमरा इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा जी कि ये पेमरा का मैटर है तो इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है. पिटीशनर के जो लॉयर थे बैरिस्टर उमर इजाज गिलानी उन्होंने कहा जी कि लॉ जो है वो ये बिल्कुल नहीं कहता है कि पेमरा स्टॉप कर सकती है पेंडिंग केसेस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन आज तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह ही दिया कि कोई बैन नहीं है आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं. पेमरा ने ये जो है उसने भी अपना जो है रिप्लाई फाइल किया था और अब कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है उसको एडजर्न किया है जून 11 को जब नेक्स्ट हियरिंग फिर इनकी इस मसले पे होगी. सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आज एमक्यूएमपी के जो डेप्यूटी कन्वीनर हैं मुस्तफा कमाल उनकी रिक्वेस्ट टू अपोलोजाइज ऑन सुओ मोटो केस जो है उसको आज रिजेक्ट किया है. थ्री मेंबर बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा एंड जस्टिसेस नईम अख्तर अफगान एंड इरफान सादात खान ये केस सुन रहे थे. और ये केस जो है लाया गया है इंडिपेंडेंट सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के लिए, क्योंकि दोनों ने ही प्रेस के अंदर मई के महीने में इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर एतराज किए थे. कमाल ने कहा था कि जी जुडिशरी का स्टैंडर्ड इसलिए नीचे आ जाता है क्योंकि ये एथिकल जो चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं. और इसी तरह के सिमिलर बयान इन्होंने दिए थे वावडा साहब ने भी. उसके ऊपर जो है वो कि जी ये जो मेडलिंग भी होती है ये जुडिशियल अफेयर में उस सिलसिले के थे. इससे पहले आपको पता ही है कि 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा था कि जुडिशियल अफेयर्स में बहुत ज्यादा मेडलिंग की जाती है और इसका ख्याल करना चाहिए. लेकिन जब इन दोनों लॉ मेकर्स ने इस तरह की बातें की तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुओ मोटो नोटिस लेते हुए इनको कहा कि आप इसके ऊपर अपना आके जवाब दें. आफ्टर मई 17th हियरिंग कोर्ट ने इनको इशू किया था शो कॉज नोटिस. जो कमाल थे उन्होंने फौरन कहा था कि मैं अनकंडीशनल अपॉलोजी करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं जो है तमाम जजेस की बड़ी इज्जत करता हूं. लेकिन सेनेटर वावडा जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल अपॉलोजाइज नहीं करूंगा, मैंने जो भी कहा मैं उसके ऊपर स्टैंड करूंगा. तो बहरहाल जी ये बात है. आज एक बहुत ही एक अच्छी भी खबर है जी पाकिस्तान से, वो ये है कि बड़े अरसे से आपको पता ही है कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था और लेकिन वहां पे क्या फ्लाइट्स उतारी जा सकती हैं कि नहीं उतारी जा सकती हैं उसका जो था मसला था. आज एक कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट जो है उसको बड़ा सक्सेसफुली यहां पे उतारा गया है. कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट क्या होता है? कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट होता है जिसके के अंदर सिस्टम लगा होता है जो कि मॉनिटर करता है सारी आसपास की हवा और सिचुएशन और सारे जो वाइटल्स होते हैं उनको ये मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या इट इज पॉसिबल के जहाजों को यहां पे लैंड किया जा सकता है. तो वो ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और सक्सेसफुली उसने यहां पे अपनी फ्लाइट को जो है वो उतारा और ये अब ऑपरेशनल हो जाएगा ये एयरपोर्ट फोर्थ क्वार्टर में, यानी कि बिल्कुल जो अक्टूबर से शुरू होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो आखिरी क्वार्टर है उसके अंदर ये अब सक्सेसफुली कर सकेंगे लैंड यहां पे फ्लाइट्स. पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि ये जो टेस्ट लैंडिंग थी ये सक्सेसफुल रही, उन्होंने वेलकम किया है इसको और उन्होंने कहा जी कि ये एयरपोर्ट जो है इसके ऊपर भी अब ये ऑपरेशनल हो जाएगा और क्वेटा के लोगों को और यहां पे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ी सहूलत होगी. और फिर उसके बाद जो है ये जिस वक्त तैयारा उतरा तो उसको कस्टमरी वाटर कैनन सल्यूट जो है वो दिया गया बाय रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट ने यहां पे. तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये ग्वादर का एयरपोर्ट, इसको चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये एयरपोर्ट है. अब जनाब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कि गवर्नमेंट कौन बनाए. मोदी जी बहुत ही ज्यादा जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो तीसरी दफा पीएम बन के आएंगे. लेकिन इस दफा जब वो पीएम बन के आएंगे तो उनके पास या बीजेपी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी. और अभी बहुत सारे मामलात रहते भी हैं कि क्या उनके साथ कोई अलायंस एनडीए की गवर्नमेंट में बनाएगा जैसे पहले दो दफा बनाई थी कि नहीं. कांग्रेस पार्टी जो है इस सिलसिले में उन्होंने भी मिलना शुरू कर दिया है. जो दो हमने कल आपको किंग मेकर बताए थे आज उनका जो है जिक्र इंडिया के मीडिया के अंदर हो रहा है. मैंने आपको कल ही बताया था कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के जो चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू और जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ हैं नीतीश कुमार, ये दोनों मैंने आपको कल बताया था कि ये किंग मेकर्स हैं. तो आज उसी का जिक्र जो है इंडियन मीडिया ने किया है कि ये दो किंग मेकर्स जो हैं इनके साथ कांग्रेस की बातचीत शुरू हो गई और बहुत सारे वो डिफरेंट चैनल्स यूज कर रही हैं, जैसे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो हैं रविंद रेड्डी उनको बीच में उन्होंने डाला हुआ है कि इन दोनों से बात करो ताकि हम जो है एक अलायंस की गवर्नमेंट बना सकें. कांग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो इमीडिएट एक्शन उसने नहीं लिया है. और जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जी कि आने वाले वक्तों में हम अपनी राजनीति बताएंगे क्योंकि अगर अभी हमने बता दी तो फिर बीजेपी उसके ऊपर फिर काम करना शुरू कर देगी. और ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है क्योंकि और कुछ दिनों में इनको ये सारा कुछ काम करना है क्योंकि जून 8 को इनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट भी होगा. ये अगर इनके बीच में गठजोड़ हो गया, नीतीश नायडू के साथ अगर कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का आप कह सकते हैं गठजोड़ हो गया, तो फिर नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी एक पैकेज उनसे मांगेंगे। नायडू साहब जो है एक स्पेशल पैकेज मांगेंगे आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए नीतीश कुमार भी स्पेशल पैकेजेस जो है वो मांगेंगे। तो इंडिया अलायंस अब इनके साथ एंगेज कर रही है और अगर ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ मिले तो ये एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत मेजर शिफ्ट जो है वो देखा जाएगा। द प्रिंट की ये स्टोरी है जी और इसके मुताबिक जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार और जो हैं चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के, वो जो है बात कर रहे हैं अब मोदी जी के साथ भी, और मोदी जी को वो कह रहे हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए है। नायडू साहब कह रहे हैं आंध्रा के लिए, और इसी तरह का स्पेशल स्टेटस और फंड्स जो हैं वो मांग रहे हैं अब नीतीश कुमार साहब भी। बीजेपी जो है उसको वो ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार साहब के 4 कैबिनेट सीट्स भी हमको चाहिए हैं, जो कि उन्होंने 2019 में मांगी थी, लेकिन 2019 में चूंकि बीजेपी की मेजोरिटी थी तो मोदी जी ने ना कर दिया था। इस वक्त अगर इनका इंडिया अलायंस में जो है वो अलायंस होना है तो टीडीपी जो है उसके पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, और इनकी वजह से जो है एक फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि बिहार जो है उसको जिस वक्त डिवाइड किया गया था 2000 में, तो बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो झारखंड में चले गए थे और उसकी वजह से बिहार बिल्कुल ड्राई हो गया था डेजर्ट की तरह। रघुराम राजन कमेटी जो थी उसने बहुत सारे इश्यूज जो थे बिहार के वो बताए थे मोदी जी को और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी, लेकिन मोदी जी कोई भी स्पेशल पैकेज देने को जो कि जॉब्स क्रिएट कर सकता था या एम्प्लॉयमेंट बिहार में ला सकता था उसको मानने को तैयार नहीं थे। इसी तरह टीडीपी जो थी वो भी न सिर्फ स्पेशल स्टेटस आंध्रा के लिए मांग रही थी, बल्कि वो जो वहां पे एक मेगा डेवलपमेंट वो लाने वाले हैं अमरावती में, उधर के लिए वो कह रहे थे कि उनको स्पेशल फंड्स चाहिए, लेकिन ये सारे का सारा काम जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने रोक दिया था। तो अब ये सारी चीजें जो हैं जी ये सामने हैं। बीजेपी जो है वो जो ये था मैजिक नंबर 272 सीट्स का वो जीत नहीं पाई है, तो इसलिए अब उसको नीतीश कुमार जी भी और चंद्रबाबू नायडू भी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर वो कांग्रेस की तरफ से की तरफ चले गए तो फिर हिस्ट्री क्रिएट होगी, फिर कांग्रेस जो है यानी इंडिया अलायंस जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। एक बिहार की रोहतास के अंदर एक रैली हो रही थी और उसके अंदर AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा है जी कि मोदी जी जो हैं उन्होंने मुसलमानों का बार बार इंसल्ट किया है ड्यूरिंग लोकसभा के इलेक्शंस के जो रैलीज वो कर रहे थे, तो मैं एंश्योर करूंगा कि ना तो मोदी जी ना तो बीजेपी का कोई भी और बंदा जो है पीएम बन के आए। बल्कि उन्होंने जो कुछ जो सीटें थी, जैसे कि बिहार की कराकत सीट थी, वहां से प्रियंका चौधरी को फील्ड किया था और उन्होंने कहा था कि आप इस तरह के लोग जो हैं, ये हमारी बहन जो हैं, इस तरह के लोगों के लिए आप वोट करें, क्योंकि मोदी जी कॉन्स्टेंटली मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी दीदी जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी, उन्होंने भी मोदी जी के ऊपर बहुत एतराज किए। उन्होंने कहा जी कि ये जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के वो ये शो करते हैं कि जो बीजेपी की लीडरशिप और मोदी जी की लीडरशिप है उसको रिजेक्ट किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, और मोदी जी ने बहुत सारी पार्टीज को तोड़ने की कोशिश की लेकिन अब लोगों ने उनकी अपनी ही पार्टी और मोरल जो है उसको तोड़ दिया है, तो लिहाजा उनको भी और अमित शाह साहब को ऑन मॉरल ग्राउंड्स फौरन रिजाइन कर देना चाहिए पार्टी से फॉर लूजिंग एट सच अ बिग स्केल। और पहले जो कहते थे मोदी है तो मैजिक है, वो मैजिक जो है वो अब चला गया है। मोदी जी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं और उन्होंने हाथ जोड़ के आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब से कहा कि प्लीज मोदी जी को सपोर्ट मत करो, है जी। तो ऐसा है। और जनाब आज एक नया इंटरव्यू आया है शेखर सुमन साहब का सामने, और शेखर सुमन साहब ने काफी वो लोग जो के एतराज कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली की जो भी आई थी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज हीरा मंडी उसके ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि भंसाली साहब जो हैं उनका अपना एक तरीका है चीजों को बनाने का, वो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, उनका अपनी एक दुनिया है और वो सिनेमा जो है अपना क्रिएट करते हैं, तो उनके सिनेमा को क्वेश्चन करना जो है वो ठीक नहीं है, टेक इट और लीव इट उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है, उन्होंने सिर्फ उससे क्यूज लिए हैं और अपनी एक स्टाइलाइज्ड किस्म की चीज बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की चीज नहीं बना सकते, तो आप बना लेते इस तरह की चीज जो उसके ऊपर आप इतना एतराज कर रहे हो। आप वैसे तो हीरा मंडी को डिस्कस ही क्यों कर रहे हो, उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा कि आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये हीरा मंडी हमने बनाई है, ये हमारी जो है सीरीज है, तो आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, हम तो आपकी फिल्में कभी डिस्कस नहीं करते, हमें तो यहां तक नहीं पता है कि आप फिल्में बनाते भी हैं कि नहीं है। अच्छा शेखर सुमन साहब, मैं आपको एक बात बता दूं सर कि जब आप दूसरे की हिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है। मिसाल के तौर पे आप ऑटोमेंस के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाएंगे ना, तो वो फिल्म आपकी अगर है तो उसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। संजय लीला भंसाली ने जाहिर है कि 200 करोड़ रुपया लिया था हीरा मंडी को बनाने के लिए, तो उन्होंने वो ग्लैम और ग्रैंडर तो दिखाना ही था, मगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो उन्होंने हीरा मंडी बनाई है उसका लाहौर के कल्चर से, या लाहौर का कोई जो ड्रेसेस दिखाए हैं, या जो लैंग्वेज आप हिंदी बोल रहे हो उसमें, आप तो उर्दू या पंजाबी तो बोल ही नहीं रहे हो उसमें। नंबर वन, आपके जो ब्लंडर्स हैं हीरा मंडी के अंदर वो देखने वाले हैं। आपने उधर एक उर्दू का न्यूज़पेपर रखा हुआ है, उस उर्दू के न्यूज़पेपर में जो कि हीरा मंडी आपकी कब की बना रहे हैं, 1947 की, और उस उर्दू के न्यूज़पेपर में है आज कोरोना की वजह से 40 लोगों की आज शहर में मौत हुई, तो 1947 में तो कोरोना नहीं था भाईजान, ये ब्लंडर। एक राइटर है बहुत बड़ी, उनकी आपने बुक रखी हुई है जो कि 1947 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उनकी किताबें 1986 के बाद से आना शुरू हुई हैं। नंबर टू, इसके अलावा आप पंजाबी नहीं बोल रहे हो, इसके अलावा आप साड़ीज पहन के दिखा रहे हो औरतों को, साड़ीज तो लाहौर में पहनती नहीं थी औरतें, शलवार कमीज पहनती थी, तो आपने ग्लैम बहुत दिखाया है उसके अंदर, लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल आपने गलत दिखाई है। आप ये नहीं कर सकते हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे विंस्टन चर्चिल के ऊपर हम फिल्म बनाए और उसको एक फिल्म स्टार हम दिखा दें। यू कांट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग समथिंग, तो आपको चीजों को करेक्ट कंटेक्स्ट में दिखाना पड़ेगा। और शेखर सुमन साहब, दूसरी बात मैं आपको बड़ा क्लियरली जरा बता दूं कि आप है तो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन गाने जो है मोस्टली आप हमारे चोरी करते हैं, तो प्लीज आप वो हमारे गाने एटलीस्ट चोरी करने छोड़ो जो हमारे बड़े बड़े उस्तादों ने और बड़े बड़े हमारे सिंगर्स ने गाए हुए हैं। और अभी लेटेस्ट जो मिसाल, बाकी तो जो पुराने गाने आपने चोरी किए जो किए, अभी लेटेस्ट मिसाल मैं आपको बता दूं कि अबरारुल हक का गाना जो है नच पंजाबन, आपने चोरी करके अपनी एक फिल्म बहुत बड़ी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आपने वो बताया, आपके करण जौहर साहब ने नादिया हसन का डिस्को दीवाने जो है वो चोरी करके आपने उसमें बनाया, उसके अलावा अभी आपने वो जो उसकी हदीका कियानी का जो उसकी माँ का लिखा हुआ जो गाना था वो बूहे बारियां, वो आपकी एक सिंगर ने चुत, तो मतलब आप फिर आप वो पसूड़ी जो है वो अभी बड़ा हमारा फेमस था वो आपने, तो आप हमारे फिर अगर आपको पता ही नहीं हमारी फिल्में हमारे ड्रामे हमारे कल्चर का, तो फिर हमारी चीजें क्यों चोरी कर रहे हो आप सर, हमारी चीजें भी ना चोरी करो, है ना, तो जरा सोच के बात किया करो आप लोग। अच्छा जनाब, अमिताभ बच्चन और जया भादरी और रेखा, आपको पता ही है कि उन्होंने जो है बड़ा अरसा तक फिल्मों में काम किया और कुछ फिल्मों में साथ में भी काम किया, तो आपको पता है एक फिल्म आई थी सिलसिला, बड़ी जबरदस्त सुपर डुपर हिट गई थी, उसमें अमिताभ बच्चन जया भादरी और रेखा भी उसके अंदर थे, तो एक इंटरव्यू जो है जया भादरी का भी एक सामने आया है जिसमें कि जया भादरी से पूछा गया कि क्या आप माइंड करेंगी कि बिग बी जो है वो रेखा के साथ काम करें, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे रूमर्स आए थे कि शायद बिग बी का जो है अफेयर है रेखा के साथ, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं बिल्कुल एतराज नहीं करूंगी, लेकिन लोग जो हैं आपको पता ही है कि सेंसेशनलाइज कर देते हैं चीजों को, तो ये एक बिल्कुल ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, वो काम से ज्यादा उनका भी ख्याल और लोगों का ख्याल जो है वो भी स्कैंडल्स के ऊपर रहेगा, तो अदरवाइज मुझे कोई भी एतराज नहीं है कि अगर अमिताभ जो है वो रेखा के साथ काम करना चाहते हैं, बड़ी बात है जी, बिग बिग थिंग, ठीक है जी। और जनाब आश्वरी ठाकरे, कुछ आपको दिमाग में ये सोच के कुछ ठक ठक होता है ये नाम सुन के? अच्छा हम पहले आपको बता दें कि आश्वरी ठाकरे क्या कर रहे हैं। आश्वरी ठाकरे साहब जो हैं वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने स्किल्स के ऊपर जो है वो बॉलीवुड के अंदर नाम बनाना चाहते हैं। कोई पिछले 5 साल से डिफरेंट फिल्म के जो सेट्स हैं और डिफरेंट फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ असिस्टेंस कर रहे हैं और अब वो बॉलीवुड के अंदर एज एक्टर भी काम करना चाहते हैं। ऐश्वरी ठाकरे जो हैं वो हम आपको बता दें, ही इज द ग्रैंड सन ऑफ शिवसेना के जो फाउंडर हैं बाल ठाकरे, उनके ग्रैंड सन हैं जनाब। तो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को ये आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, ये खटखटाना चाहते हैं बॉलीवुड का दरवाजा। तो लोगों को जनाब शायद कम ही पता होगा लेकिन ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। और जनाब इंडिया ने आज डिफीट किया आयरलैंड को नसू काउंटी स्टेडियम में इन न्यूयॉर्क। इन्होंने आयरलैंड की टीम को 96 पे आउट कर लिया इन 16 ओवर्स। इंडिया ने विन किया इस मैच को, 8 विकेट्स और 46 बॉल्स अभी रिमेनिंग थे तब इन्होंने जीत लिया। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट्स ली फॉर 27 रन्स। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 बॉलिंग ली। बहुत ही तबाही कुन बॉलिंग थी अगर आज आप देख रहे थे ये मैच। लेकिन इंडिया को अब एक डर पड़ गया है क्योंकि जो रोहित शर्मा हैं वो रिटायर हुए हैं हर्ट। तो अब जून 9 को जो पाकिस्तान के साथ इनका मुकाबला होने वाला है, क्या रोहित शर्मा उसके अंदर खेलेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज डेलस के अंदर बाबर आजम जो हैं वो मीडिया के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मेरा एक ही गोल है कि मैं वर्ल्ड कप जो है अपनी कौम के लिए जीतना चाहता हूं और मेरे अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स जो हैं इस मुकाम पे बिल्कुल इमटीरियल हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन किया गया कि यू आर सच अ बिग स्टार। उन्होंने कहा जी मेरे पर्सनल रिकॉर्ड जो है इस वक्त मुझे मैटर नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि टीम प्रॉपरली खेले और हम जो है बड़े वेल प्रिपेयर होके जो है वो आए हैं और यूएसए के साथ जो हमारा मैच है उसके अंदर आप हमारी अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। उन्होंने कहा जी कि मुझे पता है कि यहां पे यूएसए के अंदर क्या स्टाइल ऑफ क्रिकेट है और उन्होंने कहा जी हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं और लड़के एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हुए देखे भी गए बिफोर द ओपनिंग मैच विद यूएसए। इसके अलावा जो एक पाकिस्तान के लिए भी बुरी खबर है कि ऑलराउंडर इमाद वसीम जो हैं ही हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ दिस मैच विद यूएसए। उसकी वजह यह है कि इनको साइड स्ट्रेन आ गया है जिसका कि कॉन्फर्मेशन जो है बाबर आजम ने भी दी। ये दोनों जो टीमें हैं हमारी जो टीम है उसके जो रिमेनिंग फिक्स्चर्स हैं अलबत्ता उसके अंदर जो है इमाद वसीम नजर आ सकते हैं। आईसीसी को पता चल गया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की बड़ी हाइप है, हालांकि आईसीसी अपने पूरे के पूरे टिकट बेच चुकी थी लेकिन आज उसने अनाउंस किया है कि हम कुछ एडिशनल T20 वर्ल्ड कप टिकट्स जो हैं अवेलेबल करने लगे हैं फॉर फैंस इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज मैचेस। लेकिन जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए बेसिकली तो उन्होंने कहा जी कि द हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया पाकिस्तान फिक्स्चर जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा है संडे में, उसके सारे टिकट्स हम एग्जॉस्ट कर चुके थे लेकिन अब हम उसको फिर से कर रहे हैं। टिकट्स जो है अवेलेबल होंगे फॉर फिक्स्चर्स एज एट ग्रैंड प्रेरिस सेंटर्स इन टेक्सस, ब्रोवेड काउंटी स्टेडियम इन फ्लोरिडा। और जो फैंस हैं उनको कहा गया है कि जो हमने ये टिकट्स खोले हैं ये प्रीमियम और डायमंड क्लब के अंदर खोले हैं और आपको फायदा है इसका, आप वो जिस जगह पे जिस यानी कि डब्बे में जिस बॉक्स में बड़े बड़े जो क्रिकेट के लेजेंड्स बैठे होते हैं आप भी वहां पे आके बैठ के एक तो उनको भी देख सकते हैं और मैच का भी एंजॉय का मजा ले सकते हैं। तो प्लीज विजिट tickets.t20worldcup.com यूएसए के अंदर और वेस्ट इंडीज के अंदर अगर टिकट्स आपको लेने हैं तो फिर आपको बॉक्स ऑफिस पे जाना पड़ेगा। तो जनाब और टिकटें आ रही हैं लेकिन वो 10-10 हजार की हैं, अगर आपको लेनी है आप जरूर लोगी ऐसे नहीं हो सकता कम भी हो, आपको जाना पड़ेगा उधर देखना पड़ेगा tickets.t20worldcup.com पे जाके। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, सऊदी अरेबिया की जो फुटबॉल टीम है वो पाकिस्तान में पहुंच गई है टू प्ले द फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर जो कि June 6 को यानी कि कल होगा जिन्ना स्टेडियम के अंदर। ये लोग रियाद से इस्लामाबाद पहुंचे अपने मैनेजर रॉबर्टो मैंचिनी के साथ और असिस्टेंट कोच जो है याया तुरे। انہوں نے جو ہے ان کو ویلکم کیا پاکستانی آفیشلز نے. اس موقع پہ سعودی عربیہ کے امبیسڈر نواف بن سعید المالکی وہ بھی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے. یہ ٹرپ جو ہے یہ ڈیلے ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے آپ کو پوری رپورٹ بتائی تھی کہ فیفا نے کہا تھا کہ جنا اسٹیڈیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ پراپر ٹریننگ جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن شاید ان چیزوں کو امپروو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج سعودی عربیہ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے. یہ جی ہماری اسٹوریاں,
یہ تھیں آج کی گرما گرم
کہانیاں,
خبریں,
پختیاں خبراں,
پختیاں خبراں.
ہاں جی
ہو گئی,
ہو گئی جی. اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس. کرکٹ اسٹیڈیم,
بالکل
کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم نے پہنچنا ہے کیونکہ ہم نے بھی ٹکٹیں لے لی ہیں.
ہمیں ٹکٹیں, میں نے 10,001 کی بیٹ لگائی.
ہاں وہ تمہارے پاس آ جائے گی اور مجھے
$20 میرے پاس ایکسٹرا بچ رہے ہیں نا,
ایکسٹرا بچ رہے ہیں تو سال کے آخر میں تمہارے پاس $10,000 آ جائیں گے. تو تم اس کی ابھی سے ٹکٹ لے رہے ہو, تم نے ابھی سے بک کر لی ہے
$20.
اور میری بھی مارگیج جو ہے کچھ زیادہ ہی کم ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے 2 10,000 کے ٹکٹ لے لی ہے. تو اب ہم ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ جو ہے میچ کے گراؤنڈ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا کریں گے.
اور ایکسپرٹ آج ہمارے ساتھ کون,
آج ہمارے ساتھ ہیں قیصر صغیر صاحب, بہت زبردست سپورٹس رپورٹر تھے, بہت بڑے بڑے لیجنڈز کے انہوں نے انٹرویوز لیے ہوئے ہیں اور بڑی اندر کی اسٹوریاں ان کو پتا ہوتی ہیں. تو آج وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور جو آنے والا میچ ہے یا جو آج کا میچ ہے یا جو بھی کچھ ہونے والا ہے اس کے اوپر ہم ان سے کچھ تو ہونے والا ہے. تو دیکھو کتنی اندر کی اسٹوری دی ہے, کچھ ہونے والا ہے.
اچھا یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں,
لوگوں کو نہیں پتا تھا نا
جو آپ نے بتایا نا,
ہاں کچھ ہونے والا ہے.
یہ یہ لوگ ابھی بیسیکلی 2-4 تو مجھے ابھی
میسج آئے ہیں نا,
میسج آ گئے فوراً. بریکنگ نیوز,
بریکنگ نیوز ہم نے دی ہے نا, جیسے یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ ٹکٹیں اور مل سکتی ہیں آپ کو.
نہیں ٹکٹ والی زبردست نیوز دی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 1500 مجھے یاد ہے ابھی جو بیٹے سے میری کل یا پرسوں بات ہو رہی تھی, وہ جو 1000 والا ٹکٹ ہے نا وہ 1500 پہنچ گیا تھا.
میں نے تو جب پوچھا تھا 1500 کا ہی تھا
پہنچ گیا,
اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ
وہ جہاں کبوتر نظر آئیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گا.
نا نا نا, وہ کبوتر بھی جو ہے وہ بالکل وہ چڑی کی طرح نظر آئیں گے, وہ کبوتر بھی لگے گا,
پیر نظر نہیں آئیں گے.
نہیں نہیں, اس لیے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں, سموسے کھائیں ساتھ میں, چٹنی گرین کھائیں.
میں تو گیٹ کے باہر وہاں اسٹیڈیم کے باہر ہی کھڑے ہوئے, کیوں نہ دیکھنا پڑے.
نہیں تمہارے پاس تو وہ $10,000 والا ٹکٹ آ گیا نا,
10,000 20 ایکسٹرا بچے نا, 10,000 20 $20 ایکسٹرا بچے نا,
اس $20 کی تم آئس کریم کھا لینا.
وہ میں آئس کریم لے لوں گا, وہ جو ٹو میوزک والا بندہ.
بالکل بالکل, اس سے پہلے وہ لے کے پھر اندر جانا کیونکہ اندر نہیں ملے گی,
اندر نہیں ملے گی. میں تو بھائی پہنچ جاؤں گا.
بالکل ٹھیک,
پاکستان انڈیا کا میچ, یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے یہ.
بالکل بالکل,
آپ نہیں گئے
تو میں نے کہا کہ کرکٹ اسٹیڈیم سے اب ہم کیا کریں گے
لائیو لائیو ٹرانسمیشن, میں آپ کو اسکائپ سے بھیج دوں گا.
بالکل بالکل بالکل,
ٹینشن نہیں لینا, ٹینشن نہیں لیجیے گا.
بالکل ٹھیک ہے, لے لیں گے آپ تم کو.
ہاں میں نے کروما میں پیچھے اسٹیڈیم لگایا, پیچھے اسٹوڈیو میں گرین پہ بیٹھ جاؤں گا.
ہاں بالکل,
اور پیچھے وہ جو ذیشان نے کل تصویر دکھائی تھی نا اسٹیڈیم, اسٹیڈیم خالی صحیح,
خالی
اکیلا بیٹھا ہوں گا.
ہاں ہاں, کیونکہ تم تو وی آئی پی ہو نا بھائی,
وی آئی پی.
ہاں تو تم نے وہ سارے کا سارا وہ ایریا خرید لیا ہے, تو اس لیے تم اکیلے بیٹھ کے وہ میچ دیکھ رہے ہو, ہے نا؟
یس.
تو بس ٹھیک ہے, چلو جی ٹھیک ہے, پھر ہم جاتے ہیں.
چلے جناب, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ایسے جڑے رہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی ٹاپ آف دی آور کا بریک لیتے ہیں ابھی, اور پھر اس کے بعد گرما گرم جو ہے وہ اسپورٹس کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ قیصر صغیر ہوں گے, ہمارے ایکسپرٹ شازیہ جی ہوں گی, ذیشان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور تھوڑا سا رول میرا بھی ہوگا اس میں. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے.
خوبصورت آدمی بولو, خوبصورت آدمی
نہیں, آج کل امیر ہو گیا.
سال کے آخر میں دیکھو
کتنے ہو جائیں گے, اگر میں ہر مہینے $20 بچیں گے سال کے میرے کتنے پیسے ہو جائیں گے.
عامر اس نے جو تمہاری بینک آف جو وہ رائل بینک ہے آر بی سی, اس نے جو تمہاری جو 30 ایئرس کی کر دی ہے اس کو بولو پھر سے 25 پہ لے آئے, بہت پیسے میرے پاس آ جائیں گے. میں فٹافٹ دے دوں گا مارگیج ساری,
بہت پیسے ہو گئے. کہوں گا مجھے چھٹی پہ بھیج دیں,
چھٹی پہ بھیج,
اتنے پیسے جمع ہو گئے.
تم کراچی ہو کے ہو؟
میں نہیں, ورلڈ ٹور کراچی.
ٹھیک ہے,
$1 میں ہو جائے گا. $20
اور سال کے آخر میں کتنے ڈھیر ہو جائیں گے.
او یس, مزہ آئے گا.
ہاں $200 تمہارے پاس بچیں گے, تم واقعی ورلڈ ٹور پہ جا سکتے ہو.
یس ایزیلی,
یا یا بالکل. नहीं असल में तुमने वो जो 10,000 का टिकट है ना वो लेने में पैसे बहुत जाया कर दिए ना।
मैं स्टेडियम में बहुत पैसा जाया,
बहुत पैसा तुमने जाया कर
दिया।
हाँ
पता नहीं था ये एक्स्ट्रा 20 डॉलर बचने, क्योंकि वो बैंक ऑफ कनाडा भी तो गुगली कर रहा है ना, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, अब कर दिया तो चलो अच्छा है,
अच्छी बात,
अच्छी बात है।
बस आमिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ये मौका है, 30 ईयर्स के बजाय तुम 25 ईयर्स में तुम अपनी मॉर्गेज दे दोगे, यू शुड फील ब्लेस्ड।
अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह,
यू आर सो ब्लेस्ड।
ओह यस, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब प्रोग्राम में ब्रेक ले लेते हैं, इससे पहले गड़बड़ हो जाए और हाई कमांड से फोन आ जाएगा, भजन टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक चला दो। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 416-620-1778, 416-620-1778। टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम में वापस आते हैं।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
लिथियम आयोन बैटरियों में लगी आग ब्रैम्पटन में तशवीश का बाइस बन रही है। लिथियम आयोन बैटरियां सही इस्तेमाल होने पर महफूज रहती है, लेकिन जब वो नाकाम हो जाती है तो वो भड़क जाती है और आग लग सकती है, जो तेजी से फैल सकती है और काबू से बाहर होकर एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, जो रिहायशों के लिए एक खतरा बन सकती है। लिथियम आयोन बैटरियां इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती मालूमात के लिए brampton.ca/battery safety पर जाएं।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660, quicktrucklube.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है।